नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण को लेकर मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। आज के अंक में तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ मलय नीरव। मलय जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
धन्यवाद।
आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आगामी विश्व कप और न्यूजीलैंड T20 श्रृंखला के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान। Under-19 एशिया कप क्रिकेट में कल भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। विश्व बैडमिंटन टूर फाइनल्स में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को सेमीफाइनल में मिली शिकस्त और वीर गहरोत्रा ने पोल एंड एरियल स्पोर्ट्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। चर्चा की शुरुआत करते हैं क्रिकेट से। पांचवें और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में भारत ने कल दक्षिण अफ्रीका को 30 रन से हराकर श्रृंखला 3-1 से जीत ली है। हार्दिक को मैन ऑफ द मैच और वरुण को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने तिलक वर्मा के 73 और हार्दिक पांड्या के 63 रन की बदौलत 20 ओवर में 231 रन बनाए। 232 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मेहमान टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 201 रन ही बना पाई, जिसमें क्विंटन डिकॉक ने सबसे ज्यादा 65 रन बनाए। भारत के वरुण चक्रवर्ती ने 4 विकेट लिए। कल का मुकाबला काफी अहम था क्योंकि आज टीम का भी ऐलान होना था। आगामी T20 विश्व कप और न्यूजीलैंड T20 श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव और उप कप्तान अक्षर पटेल होंगे। रिंकू सिंह और ईशान किशन की टीम में वापसी हुई है, वहीं शुभमन गिल और जितेश शर्मा को टीम में जगह नहीं मिली है। काफी चौंकाने वाला था, लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन ईशान किशन का रहा है, झारखंड को भी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में जिताया, तो उसके आधार पर उनका सिलेक्शन जायज लगता है।
देखिए, ये जो पूरी प्रक्रिया हुई है T20 वर्ल्ड कप के लिए चयन की, इसमें ईशान किशन का आना तो काफी हद तक तय माना जा रहा था। जिस साहब ने कहा कि मुश्ताक अली टूर्नामेंट के बाद जब झारखंड को उन्होंने एक लंबी पारी उनका एक लंबा स्कोर खड़ा करने में मदद की और बहुत अच्छा खेल रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन अगर आप कुल मिलाकर देखें तो जो गिल को बाहर रखने का फैसला हुआ है, उस फैसले से कई लोग अचंभित हैं
जी।
खासकर पुराने क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि जैसे सुनील गावस्कर कह रहे हैं कि क्लास तो परमानेंट है, फॉर्म टेम्पररी होता है
जी।
और अगर नहीं चल पा रहे हैं, अगर वही आप जो एक लॉजिक है जो दिया जा रहा है कि उनको क्यों नहीं टीम में रखा गया, क्योंकि वो लगातार अच्छा नहीं खेल पा रहे थे। इससे पहले कि अजीत दागरकर ने जो कहा, वो तो बाद में कहा, पहले तो यही कहा जा रहा था। तो उसी लॉजिक को आप सूर्य कुमार यादव पर जब अप्लाई करते हैं तो वहां पे वो बात समझ में नहीं आती कि वो भी तो नहीं चल रहे थे। तो ये एक बहुत ही अजीबोगरीब फैसला था जिसको देखकर काफी लोग हैरत में हैं। लेकिन अगर आप अगरकर की बात को ध्यान से सुने, जो उन्होंने कहा है कि हमारे जो सलामी जोड़ी हमारी है उसमें एक विकेटकीपर के आने से बहुत अच्छा हो जाता है, टीम में बैलेंस बहुत बढ़िया होता है, संतुलन अच्छा बन जाता है। अब आप देखिए कि जिस प्रकार से संजू सैमसन ने
पिछले मुकाबले में
बहुत ही धुआंधार रन बहुत नहीं बनाए, लेकिन 22 गेंदों में 37 रन से अगर आप बनाते हैं और धुआंधार खेल का प्रदर्शन करते हैं, तो फिर उस समय ऐसा लगता है कि उनकी जगह बनती है और उसमें जब बहुत सारे अच्छे खिलाड़ी हमारे पास हैं। अब आप जितेश शर्मा को देख लीजिए, उनकी जगह नहीं बन पाई
जी,
क्योंकि संजू सैमसन दोनों भूमिकाओं में खड़े उतर रहे हैं,
स्लॉट में
ओपनिंग स्लॉट में विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन और गिल गए तो किशन आए
जी।
अब फॉर्म अभी जो खिलाड़ी खेल रहे हैं, गिल की चोट लगी थी, हालांकि चोट बहुत गहरी नहीं है
जी।
ऐसा माना जा रहा है कि गिल उभर पाएंगे चोट से, लेकिन लगातार अगर आप 15 पारियां उनकी देखें तो अर्धशतक भी एक आधी बने हैं, बहुत ही खराब प्रदर्शन उनका रहा है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि हालांकि आश्चर्य तो होता है कि जो उपकप्तान हो टीम का और जिसे एक सिरा संभालने में, एक छोर संभालने में इतनी महारत हासिल हो, उसको आप टीम में जगह ना दें तो थोड़ा तो देखकर आश्चर्य लगता है। लेकिन जो टीम कॉम्बिनेशन हम देखते हैं, जो टीम की आवश्यकताओं को देखते हैं और संतुलन बनाए रखने की कोशिश करते हैं, और हम ये देखते हैं कि विश्व कप जैसा मुकाबला है जिसमें कि हमारे पास जो हमारे जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हमारे हैं खिलाड़ियों के रूप में, उनका हम अच्छे से अच्छा प्रयोग कैसे कर सकते हैं, तो वहां तो गिल के लिए जगह बनाना मुश्किल था।
जी, और अगर हम कप्तान सूर्य कुमार यादव की भी बात करें, जरूर ये जो वर्ष गया है 2025 उनमें उनकी बल्ले से ज्यादा रन बने नहीं है, लेकिन अगर हम कप्तानी की बात करें तो एक भी श्रृंखला उनके कप्तानी में भारत हारी नहीं है। और जब वर्ल्ड कप टीम का सिलेक्शन होना है उससे जस्ट पहले उनपे जो क्वेश्चंस उठ रहे थे, तो कप्तान को आप हटा नहीं सकते इस तरीके से, विश्व कप से पहले आप बदल नहीं सकते, तो उस आधार पर भी उन्हें कप्तान बनाए रखना कितना सही डिसीजन लगता है?
देखिए, सूर्य कुमार यादव ने कप्तानी अच्छी की है इसमें कोई शक नहीं, और बल्लेबाजी खराब की है इसमें भी कोई शक नहीं, और तकनीकी दृष्टि से अगर आप देखें तो बहुत ही कमजोर दिखे हैं। हालांकि उन्हें पता है कि उनमें क्या कमियां हैं, आज भी उन्होंने एक वक्तव्य जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और मैं आउट ऑफ रन्स रहा हूं, रन मेरे नहीं बने हैं, मेरी झोली में नहीं आए हैं, लेकिन इसके बावजूद मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब एक वर्ष से ज्यादा हो गया और 13 के आसपास का, 12.84 का उनका औसत रहा है, तो 117.87 की स्ट्राइक रेट रही है, कोई हाफ सेंचुरी नहीं है, 22 पारियों में एक भी हाफ सेंचुरी, एक भी अर्धशतक नहीं है, तो इसमें, और अगर आप साउथ अफ्रीका की जो श्रृंखला अभी देखें उसी पर नजर डालें तो उनकी स्कोर लाइन देखकर बहुत ही अफसोस होता है कि ये सूर्य कुमार यादव को क्या हो गया, 12-5
जी
ये रन उन्होंने जोड़े हैं।
और 2024 में भी उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं
बहुत
रहा था,
अच्छा नहीं रहा
था, 150 हाँ, का था इस विश्व कप इस बार तो
जी। मगर कप्तान, जब आप कप्तानी कर रहे हैं तो आपका काम सिर्फ ये नहीं है कि आप ठीक से फील्ड सेटिंग करें, आप अच्छी तरह से अपने बॉलर्स को रोटेट करें, बैट्समैन में कौन कहां खेलेगा वो देखें, आपके लिए ये भी जरूरी होता है कि कप्तान को कहते हैं जिसे अंग्रेजी में लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, आपको आगे आकर ये टीम में आत्मविश्वास पैदा कराने में ये भूमिका अदा करनी होती है कि चलो मैं हूं ना
जी,
मैं ये सारा बोझ अपने कंधे पे लेने को तैयार हूं। वो बात देखने को नहीं मिली, क्योंकि अगर आप देखें कि, और लगता है कि कप्तानी का दबाव
जी
उनकी बल्लेबाजी को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि अगर आप देखें कि जब से वो T20 के कप्तान बने हैं और उसके बाद वर्ल्ड कप जब रोहित शर्मा ने जीता था उसके बाद से अगर आप देखें तो
उनके उन्होंने बल्लेबाजी में
हाँ तो 5 रन से ज्यादा दक्षिण अफ्रीका में जब जून 2024 में टीम गई थी तो 5 रन से ज्यादा उन्होंने जस्ट मेरे ख्याल से एक बार बनाए थे। तो इस तरह से ऐसा लगता है कि कप्तानी की बहुत से दबे हैं, लेकिन जो बात आपने शुरू में कही
जी,
उस बात को सुनने के बाद मुझे नवाब पटौदी, टाइगर पटौदी की बात याद आ गई कि वो भी एक बहुत ही बेहतरीन कप्तान थे, उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कप्तानी की थी, उसके बाद बहुत कम उम्र में भारत की कप्तानी उनको दे दी गई, उन्होंने भी रन उतने नहीं बटोरे जितने कि बाकी लोगों ने बनाए, लेकिन कप्तान बेहतरीन थे इसमें कोई शक नहीं। सूर्य कुमार यादव के लिए आने वाला समय बहुत ही कठिन अग्नि परीक्षा का समय है, क्योंकि कप्तानी के साथ साथ इनको वहां जाकर कुछ न कुछ अच्छा नायाब प्रदर्शन करना होगा।
और अभी जो नव निर्मित अक्षर पटेल को जो उप कप्तान बनाया, उन्हें सही तरीके से रिवॉर्ड दिया गया? अगर कभी टीम मैनेजमेंट जो है 3 नंबर पे उन्हें बैटिंग के लिए भेजती हो तो एंकर करते, कभी फिनिशर का रोल भी अच्छा निभाते हैं?
बहुत अच्छा निभाते हैं, और जो टीम में एक संतुलन है, उस संतुलन पर अगर आप नजर डालें तो जो हमारे बॉलर्स ऑलराउंडर्स हैं और बैटर्स ऑलराउंडर्स हैं दोनों एक पे एक हैं। अब हार्दिक को देखिए कितना बढ़िया उन्होंने इस बार प्रदर्शन किया है बैटिंग में। उधर वॉशिंगटन सुंदर हैं, इधर अक्षर पटेल इधर हैं, उधर शिवम दुबे हैं। तो इस तरह से टीम में बहुत ही संतुलन कायम है और यहाँ अक्षर पटेल को ये पुरस्कृत किया जाना उप कप्तानी से मुझे लगता है उनके हौसले को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी था कि ऐसा किया जाए। बहुत अच्छा संभालते थे, जब भी कभी भी संकट के बादल मडराते नजर आए भारतीय टीम के ऊपर और जब बल्लेबाज लड़खड़ाने लगे उन्होंने आके वहां पर एक सहारा दिया और बहुत जबरदस्त ढंग से उन्होंने पतवार संभाली, तो ये अच्छी बात है
जी। और इनफैक्ट हमें T20 विश्व कप भी याद आता है जो विराट कोहली के साथ मिलकर उन्होंने जो साझेदारी की थी वो भी काफी अमूल्य था। उधर कल एक और ऐतिहासिक मुकाबला होना है, भारतीय टीम कल अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट फाइनल मुकाबले में चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ मैदान पर उतरेगी। ये मुकाबला सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
आयुष महात्रे की अगुवाई वाली भारतीय टीम इस प्रतियोगिता में अजेय रही है। भारत ने सेमीफाइनल में जीत की लय को बरकरार रखते हुए श्रीलंका को 8 विकेट से हराया। दूसरी ओर पाकिस्तान ने पिछले चैंपियन बांग्लादेश को हराकर फाइनल में जगह बनाई। फाइनल तक के सफर में भारत के हरफन मौला खिलाड़ियों, बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। बल्लेबाजी में टीम ने 2 बार 400 से ज्यादा का आंकड़ा पार किया। युवा सितारों से सजी भारतीय टीम में विकेटकीपर बल्लेबाज अभिज्ञान कुंडू, वैभव सूर्यवंशी और एरोन जॉर्ज ने लगातार जबरदस्त प्रदर्शन किया है। वैभव ने संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ पहले मुकाबले में ताबड़तोड़ 171 रन की पारी खेली। वहीं अभिज्ञान कुंडू मलेशिया के खिलाफ ऐतिहासिक नाबाद 209 रन की पारी के दौरान एक दिवसीय प्रारूप में दोहरा शतक बनाने वाले पहले भारतीय बन गए। हैदराबाद के हरफन मौला आरोन जॉर्ज ने 100 से ज्यादा स्ट्राइक रेट से लगातार 3 अर्धशतकीय पारियां खेली। ऑलराउंडर कनिष्क चौहान ने फिनिशर की भूमिका बखूबी निभाते हुए अहम मौकों पर टीम को विकेट भी दिलाई। भारतीय तेज गेंदबाज दीपेश देवेंद्रन ने सर्वाधिक 11 विकेट लेकर धारदार प्रदर्शन किया। मलेशिया के खिलाफ महज 22 रन देकर 5 विकेट झटकना और पाकिस्तान के शीर्ष क्रम को ध्वस्त करना उनकी काबिलियत को दर्शाता है। अब्दुल सुभान के नेतृत्व में पाकिस्तानी गेंदबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि खिताबी मुकाबले में मैदान पर आक्रामक भारतीय बल्लेबाजी और पाकिस्तान की धारदार गेंदबाजी में किसका पलड़ा भारी होगा। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
डोमिनेट करके खेली है पूरी प्रतियोगिता भारत ने, भारतीय टीम ने। उम्मीद करेंगे कल भी जीत कर श्रृंखला 12वां जो है टाइटल अपने नाम करें।
देखिए, जहां तक भारतीय बल्लेबाजों का प्रश्न है, खासकर जो युवा चेहरे, ये उदयमान सितारे जो आप देख रहे हैं, चाहे कुंडू हों चाहे सूर्यवंशी हों, तो इनको अगर आप देखेंगे तो लगेगा कि बहुत ही तगड़ी टीम है बल्लेबाजी के लिहाज से, लेकिन पाकिस्तान की बड़ी डिसिप्लिन्ड बोलिंग अटैक है और पाकिस्तान के बोलिंग आक्रमण पर अगर आप नजर डालें तो आपको लगेगा कि जो पेस हैवी बोलिंग अटैक होता है जिसमें तेज गेंदबाज सर चढ़कर बोलते हैं, उसमें पाकिस्तान शायद भारत से एक स्टेप आगे है, क्योंकि सुभान जो है उनके खिलाड़ी उन्होंने वो हम लगातार चार्ट्स अगर आप देखें तो आपको टॉप पर नजर आएंगे। इसी तरह से मोहम्मद सयाम, अली रजा, ये 2 नाम हैं। तो तगड़ा मुकाबला होगा और भारतीय बल्लेबाज चाहेंगे कि वो वही करें जो उन्होंने ग्रुप स्टेज पे किया था पाकिस्तान को हराकर।
जी, और उधर कर महिला T20 क्रिकेट के लिए भी भारतीय महिला टीम का सामना कल श्रीलंका से होगा। चलते हैं बैडमिंटन कोर्ट की ओर। चीन के हांगचोओ में विश्व बैडमिंटन टूर फाइनल्स के सेमीफाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को चीन के लियांग वे किंग और वांग चांग से हार का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में 21-10 से भारतीय जोड़ी ने पहला गेम अपने नाम किया, वहीं दूसरा तथा तीसरा गेम चीन की जोड़ी ने 21-17 और 21-13 से जीतकर फाइनल में जगह बनाई। शुरुआत अच्छी थी लेकिन अगले दोनों गेम भारत हार गई और सेमीफाइनल में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा।
बिल्कुल, बड़ी निराशा जनक हार हुई है ये। और हालांकि सात्विक और शेट्टी की जोड़ी जो है, चिराग शेट्टी की जोड़ी, इनसे उम्मीद की जा रही थी कि इस बार बहुत अच्छा करेंगे और जो शुरुआत इन्होंने की थी बहुत अच्छी की थी, तेज गति से गेम जीता था, लेकिन आस निराश भाई
जी। उधर भारतीय 16 वर्षीय एथलीट वीर गहरोत्रा ने पोल एंड एरियल स्पोर्ट्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। मुंबई के वीर ने जूनियर बी एमेच्योर पुरुष 15 से 17 वर्ष एरियल सिल्क श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ। मलय नीरव जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद।
धन्यवाद।
और श्रोताओं, इसी के साथ स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।